हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। लेकिन झलक ने सख्ती से उन्हें मना किया था। वो साफ कह चुकी थी, अगर वो उसके साथ चल रहे हैं तो उन्हें पूरी तरह शांत रहना होगा और बीच में बिल्कुल दखल नहीं देना होगा। कहीं ना कहीं झलक को पहले से अंदाज़ा था कि सिद्धार्थ खुराना एक बार फिर उससे मिलने के लिए आ सकता है, लेकिन वो इतनी जल्दी आ जाएगा ये उसने भी नहीं सोचा था। फिलहाल झलक ने सिद्धार्थ और आर्यन को देखकर कहा, मुझे नहीं पता कि आप दोनों क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। एक काम कीजिए, आप लोग अगर मुझसे मिलने के लिए आए थे तो मुझसे मिलना हो चुका है, अब आप दोनों यहाँ से वापस जा सकते हैं, झलक ने बेबाकी से जवाब दिया। वहीं झलक का जवाब सुनकर तो सिद्धार्थ का पारा और ज़्यादा चढ़ गया था। वो तो उसकी नज़रों में दर्द देखना चाहता था, टूटा हुआ मन देखना चाहता था। जिस तरह पूरे समाज में झलक की बेइज्जती हुई थी, वो उन सारी चीज़ों का असर उसके चेहरे पर देखना चाहता था। लेकिन यहाँ तो झलक एकदम शांत चेहरे के साथ उन्हीं लोगों को वहाँ से जाने के लिए कह रही थी। आर्यन को भी झलक की बात बुरी लगी। वो उसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन तब तक सिद्धार्थ ने आर्यन का कॉलर पकड़कर कहा, तेरी इंडस्ट्रीज़ को मैं एक पल में बर्बाद कर दूंगा। तेरे पिता ने तुझे शायद अच्छी तरह से नहीं समझाया था जो तू इस तरीके से यहाँ एक बार फिर आ गया। लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले, अब तुम्हारा नामोनिशान पूरी तरह से मिटा दूंगा। तभी आर्यन जल्दी से बीच में बोल पड़ा, मिस्टर खुराना, आपको ज़रूर कोई ना कोई गलतफहमी हुई है, मेरा झलक के साथ कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही आर्यन ने वक्त आते ही एक बार फिर ये बात कही, झलक के चेहरे पर एक जानदार मुस्कान आ गई। वो तो पहले ही उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही थी और अब उसके इस तरह पाला बदलते देखकर उसे कहीं ना कहीं हंसी आ गई थी। आर्यन की बातें सुनकर सिद्धार्थ ने तीखे स्वर में कहा, अगर तुम्हारा इसके साथ किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है तो तुम यहाँ इसके साथ कर क्या रहे हो। वहीं आर्यन की बातों पर झलक ने तुरंत मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, ये क्या कह रहे हो आर्यन, तुमने तो मुझसे कहा था कि मैं यहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे साथ चलूं और तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो, तो अब इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो। जैसे ही झलक ने मासूम चेहरा बनाकर ये कहा, सिद्धार्थ का चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया। वहीं आर्यन आंखों में हैरानी लिए झलक को देखने लगा। उसका इरादा वहां जाकर झलक को अपने साथ ले जाने का था, क्योंकि झलक से वो एक तरफा प्यार करता था, या यूं कहें कि उसकी खूबसूरती में पूरी तरह डूब चुका था। इसलिए झलक को अपनाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। उसे लगा था कि वो आएगा, झलक से माफ़ी मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा और फिर उसे उस गंदगी से निकालने की कोशिश करेगा जिसमें वो फंसी हुई है, उन तथाकथित शुगर डैडी से दूर ले जाकर अपने साथ रखेगा और फिर अपनी मर्जी से उसके साथ ज़िंदगी बिताएगा। लेकिन यहाँ सिद्धार्थ से अचानक आने से उसका सारा प्लान पूरी तरह बिगड़ चुका था। अब वो इधर उधर देखने लगा। उधर झलक से शादी की बात सुनकर सिद्धार्थ का पारा सातवें आसमान पर पहुँच गया। उसने तुरंत आर्यन का गिरेबान पकड़कर उसे ज़ोर से खींचा और एक तमाचा उसके मुंह पर दे मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे दुश्मन के साथ रिश्ता जोड़ने की? अब तो मुझे इस बात का 100% यकीन हो गया है कि तुम इसके साथ मिले हुए हो। लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम लोग खुराना परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरी शादी आकांक्षा से नहीं होने दोगे तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम दोनों अकेले नहीं हो, कोई ना कोई इसके साथ पूरी तरह मिला हुआ है जो इसे हमारे बारे में पल पल की खबर दे रहा है। लेकिन वो कौन है ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे लगा था कि तेरे बाप ने तुझे अच्छी तरह समझा दिया होगा, लेकिन शायद उसने तुझे समझाने में कमी छोड़ दी। इतना कहकर वो लगातार आर्यन पर हाथ उठाने लगा। उसी दौरान आदित्य, अभय, कबीर और बलबीर जी भी वहाँ पहुँच चुके थे। झलक को वहाँ इस हालत में देखकर उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं और वो आगे बढ़कर झलक से सवाल करना चाहते थे, उसे कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन तुरंत दिग्विजय जी ने उन्हें देख लिया और चुप रहने का इशारा करके उन्हें सीधा अपने पास आने को कहा। अब बलबीर सीधे दिग्विजय जी के पास आए और उनकी ओर झुकते हुए बोले, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? आप हमारे सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे? दिग्विजय जी ने शांत स्वर में कहा, तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तू यहाँ शांति से बैठ और देख क्या हो रहा है। आदित्य ने पहली नज़र में ही आर्यन को पहचान लिया था और सिद्धार्थ को भला वो कैसे नहीं पहचानता। लेकिन ये देखकर कि सिद्धार्थ आर्यन को मार रहा है, आदित्य को अजीब सा लगा। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि झलक अब भी पूरी शांति से अपना सूप पी रही थी। वो खाने में व्यस्त थी और हल्की सी मुस्कान के साथ आर्यन की पिटाई होते हुए भी देख रही थी, मानो ये सब उसके लिए कोई नया दृश्य ही ना हो। वहीं आदित्य को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। वो मन ही मन सोचने लगा कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है? क्या सच में ये दोनों मिस मल्होत्रा के आशिक हैं जो उसके लिए आपस में लड़ रहे हैं? जितना वो इस बारे में सोचता उसका दिमाग उतना ही ज़्यादा ख़राब होता जा रहा था। उसका दिल किया वो सीधा झलक से सवाल करे, क्योंकि पानी सर के ऊपर जा चुका था। इससे पहले आदित्य झलक के पास जाता, तभी दादाजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, बेटा प्लीज बस कुछ मिनट दे दो हमें, उसके बाद जो कहोगे हम करेंगे, बस थोड़ा इस साइड आकर खड़े हो जाओ। तब बलबीर जी ने भी आंखों के इशारे से आदित्य को मना किया और अभय कबीर भी अभयरानी से ये सारा दृश्य देखने लगे। वहीं सिद्धार्थ ने आर्यन को लगातार लात घूसों से धोना शुरू कर दिया था, लेकिन इससे पहले कि सिद्धार्थ मार मारकर आर्यन को अधमरा कर देता, ठीक उसी वक्त धीरज रायचंद और उनकी बेटी मीरा वहां पहुंच गए। आते ही उन्होंने सबसे पहले आर्यन को सिद्धार्थ की पकड़ से छुड़ाया। धीरज तुरंत ही सिद्धार्थ की ओर घूरते हुए बोले, ये क्या कर रहे हैं मिस्टर खुराना, आप इस तरह मेरे बेटे को कैसे मार सकते हैं? मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है, जरूर इसी लड़की ने इसे किसी बहाने से यहाँ बुलाया होगा। जैसे ही धीरज ने वहां आते ही सीधे झलक को निशाना बनाया, झलक ने अब भी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, वो उसी शांति के साथ बैठी रही। वहीं मीरा गुस्से से भरी हुई झलक को घूरते हुए बोली, आखिर तुम करना क्या चाहती हो, क्या मेरे भाई की जान लेना चाहती हो? देखो झलक, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम यहाँ हमसे बदला लेने आई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे भाई का इस्तेमाल करो। उधर धीरज लगभग भीख मांगते हुए सिद्धार्थ से बोले, मैं जानता हूँ कि मेरा लड़का नंबर वन का बेवकूफ़ है, मुझे बिना बताए यहाँ इस लड़की के पास चला आया। आप नहीं जानते, बड़ी मुश्किल से मैंने इसका पता लगाया और इसके पीछे पीछे यहाँ पहुँचा हूँ। प्लीज़ मिस्टर खुराना, हमें एक और मौका दीजिए, वादा करते हैं कि हम कभी भी आपके रास्ते में नहीं आएंगे। तभी एक और सख्त और प्रभावशाली आवाज़ वहाँ गूंजी, मिस्टर धीरज रायचंद। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उर्वशी खुराना की थी। उनके साथ नैना, आकांक्षा और रणविजय भी वहाँ आ पहुँचे थे। अभय की नज़र जैसे ही नैना के साथ खड़ी आकांक्षा पर पड़ी, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। अभय का चेहरा अभी भी पट्टियों से ढका हुआ था, क्योंकि झलक ने उसे बुरी तरह घायल किया था, इसलिए कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। ऊपर से वो दादाजी के साथ थोड़ा साइड में था, लेकिन अभय ने अपनी आंखों से तुरंत आकांक्षा को पहचान लिया था। आदित्य तो इतने सारे लोगों को एक साथ वहां इकट्ठा होते देख सिर पकड़कर एक तरफ बैठ गया। अब वो चुपचाप सब कुछ देख रहा था और आकांक्षा को देखकर तो उसके पैर बर्फ के जैसे जम गए थे और वो कुछ बोलने की सिचुएशन में नहीं था।
उधर उर्वशी तेजी से धीरज के पास पहुंची और गुस्से में उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ते हुए बोली, हमें तो पहले ही शक था कि इस लड़की के साथ कोई ना कोई मिला हुआ है, वरना इसे पल पल की खबर कैसे मिलती? तुम्हारे बेटे ने इसके साथ मिलकर सारी हदें पार कर दी हैं, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इतने में आकांक्षा भागकर सिद्धार्थ के गले से लिपट गई। सिद्धार्थ, तुम कैसे हो? मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढती रही, मुझे लगा कहीं तुम्हें कुछ होना गया हो। तुम ठीक तो हो ना? और तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हें क्या जरूरत थी इस लड़की के पास आने की? ये गंदगी है, कीचड़ है, कीचड़ में पत्थर मारोगी तो छींटे अपने ऊपर ही आते हैं, तुम्हें इसके पास आने की क्या जरूरत थी? तभी नैना गुस्से से झलक को घूरते हुए बोली, ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? देखो, हम अच्छी तरह जानती हैं कि तुमने जरूर किसी को अपना तथाकथित शुगर डैडी बना रखा है, जिसके सहारे तुम ये सब करवा रही हो। लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरी बेटी आकांक्षा ओबेरॉय और सिद्धार्थ की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर तुम्हें लगता है कि अपनी इन हरकतों से तुम उनकी शादी रुकवा दोगी तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आदित्य तो आकांक्षा ओबेरॉय का नाम सुनते ही पूरी तरह सन रह गया। उसने तुरंत अभय की ओर देखा। अभय की नज़र भी उसी समय आदित्य से मिली और दोनों की आंखों में एक ही सवाल था, क्या सामने खड़ी यही लड़की आकांक्षा ओबेरॉय है? अब ये दृश्य देखकर अभय की आंखें सचमुच फटी की फटी रह गईं। सभी लोग हैरानी से ये नज़ारा देख रहे थे। बलबीर जी भी पूरी तरह स्तब्ध थे, क्योंकि अभय बार बार सिर्फ आकांक्षा ओबेरॉय का ही नाम ले रहा था। अब तक जो कुछ भी वे लोग झलक के बारे में सोच रहे थे, वो सब धीरे धीरे ढहने लगा था। हवा का रुख बदल रहा था और सच सामने आने से पहले ही माहौल में अजीब सी खामोशी फैल गई थी।